आज है 16 जून दिन गुरुवार। स्वागत है आपका नमस्कार भारत में। मैं हूँ सुशीला सिंह। ऑरलैंडो हमले की जांच कर रही FBI ने कहा, घटना के बाद खास धर्म के लोगों को बनाया जा रहा है निशाना।
Making these threats is not only wrong, in most cases, making these threats is illegal.
बांग्लादेश में इस्लामी चरमपंथियों के खिलाफ चल रहे अभियान में करीब 11,000 लोग गिरफ्तार। कैसे दिल्ली में रह रही अफगान औरतों की जिंदगी में बदलाव लाने की हो रही है कोशिशें।
हमें पता चला कि उनको कुकिंग में इंटरेस्ट है, तो हमने सोचा है कि इनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाए ताकि इनको एक कुछ स्किल्स आ जाएं, कलिनरी स्किल्स जो प्रोफेशनल, और आल्सो कुकिंग टेक्निक्स पता चलें जिसको इनको कमर्शियल लेवल पे कोई काम स्टार्ट करने में हेल्प करे।
होगी समाचार पत्रों की समीक्षा भी, लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
BBC समाचार वात्सल्य राय से। अमरीकी अधिकारियों के मुताबिक ऑरलैंडो के एक क्लब में हुए हमले के बाद मुसलमानों को धमकी देने के मामलों की जानकारी मिली है। हमले की जांच कर रही FBI ने कहा है कि ऐसी घटनाएं जांच के काम में बाधा पहुंचा सकती हैं। एजेंसी ने यह भी कहा है कि अगर किसी के साथ ऐसी घटना होती है तो वो उसकी रिपोर्ट करें। उधर रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के संभावित उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो चाहते हैं कि जिन लोगों के नाम चरमपंथ की निगरानी सूची में हैं उनके बंदूकें खरीदने पर रोक लगाई जाए। ट्रंप इस मुद्दे पर बातचीत के लिए नेशनल राइफल एसोसिएशन से मुलाकात करेंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी की संभावित उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन ने भी बंदूक हासिल करने से जुड़े नियम सख्त करने की बात की है। ब्राजील के अंतरिम राष्ट्रपति मिशेल तेमर पर सरकारी तेल कंपनी पेट्रोब्रास के एक पूर्व अधिकारी ने भ्रष्टाचार में शामिल होने के आरोप लगाए हैं। अधिकारी का कहना है कि तेमर ने उन्हें साल 2012 में साओ पाओलो के मेयर के चुनाव में उम्मीदवार अपने एक सहयोगी को अवैध तरीके से सहयोग देने को कहा था। तेमर ने इन आरोपों से इनकार किया है। तेमर करीब एक महीने पहले ब्राजील के अंतरिम राष्ट्रपति बने हैं। ब्रिटेन में यूरोपीय संघ से अलगाव पर होने वाले जनमत संग्रह के पहले जर्मनी ने सदस्य देशों को इसके नतीजों को लेकर आगाह किया है। जर्मनी का कहना है कि अगर ब्रिटेन ने अलग होने का फैसला किया तो यूरोपीय संघ बिखर सकता है। जर्मनी के विदेश मंत्री फ्रैंक वाल्टर स्टाइन मेयर ने कहा,
Eines kann man nur, glaube ich, mit ziemlicher Sicherheit voraussagen, für den Fall.
मैं एक बात निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि अगर ब्रिटेन के ज्यादातर लोगों ने यूरोपीय यूनियन से अलग होने के पक्ष में मतदान किया तो बात सिर्फ 28 देशों में से एक के अलग होने की नहीं होगी। इससे यूरोपीय संघ को झटका लगेगा। इसके बाद यूरोपीय संघ को एकजुट रखने के लिए ठोस प्रयासों की जरूरत होगी। यह तय करना होगा कि दशकों तक एकजुट रहा संघ बिखर न जाए। ये थे जर्मनी के विदेश मंत्री के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। मिस्र के अधिकारियों का कहना है कि बीते महीने भूमध्य सागर में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान के अहम हिस्से मिल गए हैं। ये विमान पेरिस से काहिरा जाते वक्त हादसे का शिकार हो गया था। इसमें 66 लोग सवार थे। हादसे की वजह की जानकारी नहीं हो सकी है। जांच में जुटे अधिकारियों ने इस बात से इनकार नहीं किया है कि हादसे की वजह चरमपंथी हमला हो सकता है। हालांकि किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। BBC समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। अमेरिका के ऑरलैंडो के एक क्लब में हुए हमले की जांच कर रही FBI के अनुसार खास धर्म के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। FBI ने आम लोगों से अपील की है कि वो ऐसा ना करें। एजेंसी ने यह भी कहा है कि अगर किसी के साथ ऐसी घटना होती है तो वो उसकी रिपोर्ट करें। दूसरी ओर रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के संभावित उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि FBI की निगरानी सूची में शामिल लोग बंदूकें हासिल ना कर सके, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक पार्टी की संभावित उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन ने भी बंदूक हासिल करने से जुड़े नियम सख्त करने की बात कही है। BBC संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुना रहे हैं वात्सल्य राय।
अमेरिका के ऑरलैंडो में एक नाइट क्लब में हुए हमले के बाद से मुसलमानों को धमकी देने के मामले सामने आए हैं। FBI के अधिकारियों के मुताबिक उन्हें रिपोर्ट मिली है कि हमले के बाद से खास धार्मिक समुदाय से जुड़े कुछ लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। ऑरलैंडो के एक नाइट क्लब में बीते रविवार को उमर मतीन नाम के व्यक्ति ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थीं। इस हमले में मतीन समेत 50 लोगों की मौत हो गई थी। मतीन अफगान मूल का अमरीकी नागरिक था। FBI के अधिकारी रॉन हॉपर के मुताबिक इस हमले से जुड़ी जांच के दौरान मुसलमानों को धमकी देने से जुड़ी घटनाओं के बारे में जानकारियां मिली हैं। उन्होंने आम लोगों से कहा कि वो ऐसा न करें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी के साथ इस तरह की घटना होती है तो उन्हें इसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए बल्कि इसकी शिकायत दर्ज करानी चाहिए। अमरीका के अटॉर्नी ली बेंटले के मुताबिक ऐसी घटनाएं मामले की जाँच में बाधा डालती हैं। उन्होंने कहा,
making these threats is not only wrong, in most cases, making these threats is illegal.
इस तरह से धमकी देना गैर कानूनी है, इसे बंद कर दीजिए। हम कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, ऐसी कोई भी धमकी उसमें बाधा पहुंचाएगी। पल्स नाइट क्लब में जो अपराध हुआ उसकी जांच में हम अपना 100% वक्त लगाना चाहते हैं। हम जो करना चाहते हैं उससे हमारा ध्यान मत हटाइए। ये थे ली बेंटले के शब्द। उधर रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के संभावित उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो चाहते हैं कि जिन लोगों के नाम चरमपंथ की निगरानी सूची में हों उनके बंदूक खरीदने पर रोक लगाई जाए। उमर मतीन भी FBI की निगरानी सूची में था। ट्रंप ने कहा कि वो इस मुद्दे पर बातचीत के लिए नेशनल राइफल एसोसिएशन से मुलाकात करेंगे। इसके जवाब में एसोसिएशन ने कहा है कि वो पहले से ही चरमपंथियों के बंदूक खरीदने का विरोध करती रही है। ट्रंप अब तक बंदूक रखने से जुड़े अधिकारों के समर्थक रहे हैं। नेशनल राइफल एसोसिएशन ने बीते महीने उनकी दावेदारी का समर्थन किया था। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की संभावित उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन ने भी एक बार फिर बंदूक खरीदने से जुड़े नियमों को सख्त करने की जरूरत पर बल दिया है। हिलेरी क्लिंटन ने कहा,
We do need to stop terrorists from getting their hands on the tools to carry out attacks so easily.
हमें चरमपंथियों को इतनी आसानी से हमले करने के लिए हथियार हासिल करने से रोकना होगा, खासकर सेना जैसे हथियार जिनकी हमारी गलियों में कोई जगह नहीं है। निश्चित तौर पर हमें मानना होगा कि अगर FBI चरमपंथियों से संदिग्ध रिश्ते रखने को लेकर आपकी निगरानी कर रही है तो आपको हथियार खरीदने नहीं दिए जाने चाहिए। ये थे हिलेरी क्लिंटन के शब्द। ऑरलैंडो हमले के बाद अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भी हथियारों की खरीद से जुड़े कानून में बदलाव की वकालत कर चुके हैं।
ऑरलैंडो हमले के बाद खास धर्म के लोगों को बनाया जा रहा है निशाना। ये थे वात्सल्य राय। बांग्लादेश में इस्लामिक चरमपंथियों के खिलाफ जारी देशव्यापी अभियान के तहत हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पिछले 4 दिनों से जारी पुलिस के इस अभियान में मंगलवार तक 11,500 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि इनमें से 150 से भी कम लोगों के इस्लामिक चरमपंथी होने की आशंका है। पुलिस पर ज्यादातर लोग आरोप लगा रहे हैं कि इस अभियान के जरिए पुलिस पैसे बनाने में जुटी है। मीडिया ने पुलिस की इस कार्रवाई को गिरफ्तारी का धंधा करार दिया है। मोहनलाल शर्मा ने बात की बांग्लादेश में वरिष्ठ पत्रकार सैफुल हुदा से और उनसे पूछा कि बांग्लादेश में इतनी भारी तादाद में गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं?
ये सियासी मामला है। वैसे जब यहाँ थोड़ा किलिंग वगैरह शुरू हुआ तो आवामी लीग का कहना यह था कि BNP और जमात एक्टिविस्ट लोग मिलकर दहशत फैलाना चाह रहे हैं मुल्क में, और इसी वजह से वार्निंग भी दिया गया उन लोग को, लेकिन ये टेंपल के पुरोहित को या चर्च के क्रिश्चियन पादरी को भी इन लोग छोड़े नहीं।
बहुत सारे ब्लॉगर्स मारे जा चुके हैं बांग्लादेश में, और ब्लॉगर्स के बाद ईसाई भी मारे गए, कुछ हिंदू मारे गए। क्या ये पूरी ड्राइव उसको जोड़ के भी देखते हैं आप?
एनालिस्ट का कहना है कि ये दोनों, ये जो ब्लॉगर्स और पादरी और हिंदू प्रीस्ट जो है, इन लोग का जितना भी हत्या हुए सभी एक इसमें जुड़ा हुआ है। इसी वजह से गवर्नमेंट वार्निंग देते देते एक ऐसे हाल में पहुंच गई कि उनको ये ऑपरेशन में उतर नहीं पड़ा।
तो ये जो पुलिस एक अपना पूरा बहुत बड़ा अभियान चला रही है, इन सब लोगों को गिरफ्तार किया है, तो ये कहाँ के लोग हैं? मतलब पूरे बांग्लादेश के लोग हैं या अलग अलग कुछ ऐसी पॉकेट्स हैं जहाँ से पुलिस ने इनको पकड़ा है?
नहीं, ये पूरा बांग्लादेश में ये ऑपरेशन चल रहा है और सब डिस्ट्रिक्ट में ही कुछ ना कुछ अरेस्ट हुआ है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट। और अभी हाल ये है कि जितने भी अरेस्ट हो रहे करीब 11,000 जो भी अरेस्ट हुए ज्यादातर ही ये बीएनपी या जमात के एक्टिविस्ट हैं। इसमें कुछ आदमी को ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो टेररिस्ट एक्टिविस्ट मुजाहिदीन जमात इस्लामी मुजाहिदीन या आईएसआई के साथ उनका ताल्लुक है ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन कोई चार्जेस वैसे ही लाया गया है लेकिन अभी तक वो ट्रायल इसमें नहीं आया और 6 महीने तक तो ये पता भी नहीं चलेगा कि जब तक उन लोग का बेल नहीं होगा या कोर्ट में हियरिंग शुरू नहीं होगा तो ये भी पता नहीं चलेगा कि वो लोग सही मानों में वो सब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं या नहीं है।
तो सरकार की जो मुहिम है वो किन को पकड़ना चाहते हैं, इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों को पकड़ना चाहते हैं या किसी भी तरह का ऐसा कोई लिंक मिलता है तो?
सरकार का ये कहना है कि ये जो दहशत फैलाया जा रहा है ये जमात इस्लामी और बीएनपी के मदद से हो रहा है और इसीलिए ये बीएनपी और जमात के ऊपर इतने ज्यादा हावी है।
तो अभी तो इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, पकड़ा है, क्या ये मामला आपको पॉलिटिकल नजर आता है?
थोड़ा बहुत पॉलिटिकल नजर आता है इसलिए कि सामने खालिदा जिया का एक केस है जो करीब फाइनल स्टेज में है और ये ऑर्डर भी निकलेगा और कन्विक्शन होने का ज्यादातर उम्मीद कर रहे हैं ये प्रोसिक्यूशन कि उनका कन्विक्शन हो जाएगा। अगर उनका कन्विक्शन हो गया तो बात कहाँ तक जाएगा ये देखने की बात है।
बांग्लादेश में इस्लामिक चरमपंथियों पर लगाम लगाने की कोशिश, ये थे वरिष्ठ पत्रकार सैफुल हुदा।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत सुशीला सिंह से और अब रुक करते हैं भारत का। बीजेपी सांसद हुकुम सिंह के कैराना में हिंदुओं के पलायन करने के बयान के बाद इस मामले की सत्यता की जांच के लिए बीजेपी ने वहां 9 सदस्यीय टीम को भेजा था। हालांकि इस टीम का वहां की जनता ने विरोध किया और कहा कि पलायन का बयान राजनीति से प्रेरित है। हुकुम सिंह ने पहले 346 और फिर 64 लोगों की सूची जारी की थी और कहा था कि ये लोग आपराधिक तत्वों के चलते कैराना छोड़ने को मजबूर हुए हैं। हालांकि राज्य प्रशासन ने इन आरोपों को खारिज किया। बीजेपी की जांच टीम में 5 सांसद भी थे, इनमें से एक थे मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर और बागपत के सांसद सत्यपाल सिंह। हमारे सहयोगी निखिल रंजन ने सत्यपाल सिंह से पूछा कि उनकी टीम ने जाँच में क्या पाया है।
एक वर्ग विशेष के व्यक्तियों के ऊपर इतना वहाँ पर अपराध हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, पुलिस और जिला प्रशासन बिल्कुल नाकाम हो गए, लोग डर की वजह से अपने घर छोड़ करके, घर और व्यापार छोड़ करके दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं। जांच कमेटी इतने बड़े मुद्दे को कुछ घंटों के अंदर गहराई से जांच करना संभव नहीं, लेकिन वहाँ परसेप्शन क्या है, लोगों की भावनाएं क्या है, उसके लिए हमारी टीम वहाँ गई और सैकड़ों लोगों से हम लोग मिले, कई 45 परिवारों से मिले जिनके परिवार के लोग गैंगस्टरों द्वारा, गुंडों द्वारा गोली मार दी गई, लेकिन बेचारों को इतनी भी हिम्मत नहीं कि जाकर के पुलिस में अपनी कंप्लेंट कर सके, और पुलिस में अगर कंप्लेंट किया तो पुलिस वालों ने कभी सुना नहीं। इन बातों में हम लोगों को सत्यता मिली।
तो ये जो आप कह रहे हैं कि ये वर्ग विशेष की बात है, लेकिन आपकी ही पार्टी के जो हुकुम सिंह जी हैं जिन्होंने वो सूची जारी की थी वो आज खुद कह चुके हैं कि ये वर्ग विशेष का नहीं, कानून व्यवस्था का मामला है और प्रताड़ित लोगों में दूसरे वर्ग के लोग भी शामिल हैं। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक वर्ग के लोग हैं?
मेरी जानकारी में और टीम की जानकारी में जांच कमेटी के सामने जो भी लोग आए उसमें जो है ये बात विशेष रूप से लेकर के सामने आई कि कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है और ये कानून व्यवस्था का ही प्रश्न है मूल रूप से। दुर्भाग्य की बात ये है एक वर्ग विशेष के लोग भाग रहे हैं और जो अपराधी तत्व हैं वो अपराधी तत्व दूसरे वर्ग विशेष से संबंधित हैं।
क्या आप दूसरे वर्ग के जो लोग हैं क्या उन लोगों से भी आप मिले और उनसे भी आपने बात की?
मैं ये वर्ग विशेष का मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे वर्ग विशेष के लोग एक वर्ग पर कोई अत्याचार करे, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी समुदाय में, किसी भी जाति या धर्म के लोग जो हैं, जो साधारण लोग होते हैं वो ऐसा काम नहीं करते। मैं बात कर रहा हूँ गुंडों की, बदमाशों की, गैंगस्टरों।
आप ये कह रहे हैं कि जो बदमाश लोग हैं वो सिर्फ एक ही समुदाय के हैं?
जो वहाँ पर जो बात आई है, जितनी भी बात जांच कमेटी के सामने आई है वो ऐसा ही आया।
ये भी तो हो सकता है ना कि आप जिन लोगों से मिले वो वैसे ही लोग थे?
हम लोगों ने ये बात कही थी, प्रेस वालों के सामने भी बात कही थी कि जो भी हमसे मिलना चाहता है, किसी भी समुदाय का लोग मिलना चाहते हैं तो हमसे मिल सकते हैं। हम लोगों ने ये नहीं कहा कि हम एक ही समुदाय से मिलने हैं, हम लोग तो सत्यता जानने के लिए वहाँ पर गए।
स्थानीय लोगों ने आप लोगों का विरोध भी किया, ये कौन से लोग थे?
नारेबाजी हो रही थी, नारेबाजी में तो इस तरह की बातें कर रही थी। एक किस्म से उसको विरोध भी नहीं कर सकते और विरोध भी इनडायरेक्टली बोल सकते हैं। वो इस तरह की बातें कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम ईसाई भाई भाई इस तरह की बातें कर रहे थे, भारत माता के नारे भी कर रहे थे, लेकिन लगता है कि जानबूझ करके मेरे ख्याल में मोबिलाइज की हुई वहाँ पर क्राउड।
बीजेपी का दावा करना में एक खास समुदाय के लोग कर रहे हैं पलायन, ये थे बीजेपी के सांसद सत्यपाल सिंह। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति का बचाव किया और सवाल उठाया कि कांग्रेस और बीजेपी के शासनकाल में ऐसे ही पदों को असंवैधानिक क्यों नहीं करार दिया गया। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या लाभ का पद मामले में आम आदमी पार्टी घिरी हुई नजर आ रही है, वहीं इन 21 विधायकों की सदस्यता भी खतरे में पड़ी हुई है। इस मामले में दिल्ली के वकील प्रशांत पटेल ने चुनाव आयोग में याचिका दाखिल की थी। निखिल रंजन ने इस याचिका में उठाए गए सवालों पर प्रशांत पटेल से बात की।
ये संवैधानिक विषय है और पहले भी इस तरह की नियुक्तियों पर मेंबर्स की सदस्यता कैंसिल हुई है। जया बच्चन जी की हुई थी, सोनिया जी ने तो सदस्यता कैंसिल होने से पहले ही डर से रिजाइन कर दिया था। गत वर्ष दो एमएलए जो यूपी के थे, बजरंग बहादुर सिंह और एक और थे, उनकी सदस्यता खारिज हुई थी। चूंकि ये संवैधानिक विषय है, इसमें कोई सरकार का रोल नहीं है, इसमें निर्णय माननीय राष्ट्रपति महोदय को और चुनाव आयोग को लेना है। अगर कहीं दूसरे राज्यों में भी संसदीय सचिव हैं तो उनको पहले कानून बनाया गया है, फिर उनको कानून बनाने के बाद नियुक्ति की गई। दिल्ली केस में क्या कि इन्होंने नियुक्तियां पहले कर दी, कानून नहीं बनाया और इन्होंने राष्ट्रपति के साथ चीट करने का प्रयास किया। जब मैंने पिटीशन लगा दी 19 जून को, तब ये जल्दबाजी में 20 को कैबिनेट की मीटिंग बुलाते हैं, 24 को बिल पारित करते हैं और विदाउट फॉलोइंग रिक्वायर्ड प्रोसीजर्स। और दूसरी सबसे मुख्य बात यह है कि दिल्ली एक राज्य नहीं है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसकी बाकी राज्यों से तो कभी तुलना की ही नहीं जा सकती। दिल्ली जो है संविधान के 8वें चैप्टर में आती है, बाकी राज्य संविधान के 3rd चैप्टर में आते हैं। तो दिल्ली में भी आपको अगर कोई रूल लाना है, कोई बिल पास करना है, तो आपको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है वाया एलजी।
उनकी जो ये दलील है कि जो सेक्रेटरी थे जिनको नियुक्ति किया गया वो किसी भी तरह का लाभ नहीं ले रहे थे, कोई तनख्वाह नहीं ले रहे थे, कोई वेतनमान या कोई और सुविधा नहीं ले रहे थे, तो फिर वो इस दायरे में नहीं आते हैं।
देखिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की जो डेफिनेशन है काफी ब्रॉड है। प्रॉफिट का मीन सिर्फ ये नहीं होता कि आप कोई पैसा ले रहे हैं। प्रॉफिट मीन्स अगर आपको कोई पोस्ट मिल गई और तो ये पोस्ट ही अपने आप में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की श्रेणी में आ जाती है। क्योंकि दिल्ली सरकार में 70 विधानसभा सीटें हैं, तो यहाँ पर 7 ही मंत्री हो सकते हैं, 1 CM + 6 मिनिस्टर। इन्होंने अपने 21 विधायकों को संसदीय सचिव का पद दे करके कार्यपालिका का अंग बना दिया। जो विधायिका के लोग हैं उनकी जिम्मेदारी जनता के प्रति है, जनता के सवालों को विधानसभा में उठाएंगे। जब आप कार्यपालिका के अंग बन गए, सरकार के अंग बन गए, तो आपकी जो ड्यूटी है दिल्ली की जनता के प्रति आप कैसे निभा पाएंगे? आपको तो सरकार ने एक ब्राइब दे दी ना, आपको झुंझुना पकड़ा दिया। फिर ये तो बात सिद्ध हो चुकी है कि वहाँ पे रूम सेल आउट हुए हैं, वो सारे प्रूफ मैंने 28 दिसंबर को जो मैंने कमीशन इलेक्शन कमीशन और ऑनरेबल प्रेसिडेंट को दिया था।
आपने कहा कि आप नहीं चाहते थे कि राष्ट्रपति को कोई चीट करे, लेकिन केजरीवाल जी की ये दलील है कि ये सारा कुछ जो है वो बीजेपी की जो सरकार है केंद्र में उसके निर्देश पर किया जा रहा है।
लाभ के पद से संबंधित कोई भी शिकायत याचिका आती तो राष्ट्रपति इस विषय में चुनाव आयोग से ओपिनियन लेगा और चुनाव आयोग की सलाह के बाद ही राष्ट्रपति अपना डिसीजन देगा और राष्ट्रपति का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। इसमें इन सारे विषयों पर कहीं कभी गवर्नमेंट या पीएम कहीं नहीं आती, कहीं भी गवर्नमेंट या पीएम का नाम नहीं लिखा, क्योंकि राष्ट्रपति पोस्ट की अपने आप में सुपीरियर होती है, संवैधानिक पोस्ट है। इलेक्शन कमीशन भी न्यूट्रल बॉडी होती है, इलेक्शन कमीशन सारे राज्यों में चुनाव कराता है। ये सारे जो गतिविधियां इलेक्शन कमीशन करता है, एक पार्टी पहले सत्ता में होती है, दूसरी पार्टी आ जाती है, तब तो कोई सवाल नहीं उठाता कि इलेक्शन कमीशन ने गलत चुनाव कराया, तब तो सब लोग कहते हैं निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं। अब चूंकि अगर आपके विरोध में निर्णय इलेक्शन कमीशन दे रहा है तो इलेक्शन कमीशन सरकार का एजेंट हो गया, सरकार करा रही है।
वकील प्रशांत पटेल से बात कर रहे थे निखिल रंजन। और अब समय समाचार पत्रों की समीक्षा का। लाइव स्टूडियो में मेरे साथ आ चुके हैं वात्सल्य राय। वात्सल्य, आज क्या क्या खास खबरें हैं समाचार पत्रों में?
जी, खबरें ये हैं सुशीला जी की, सस्ती उड़ान की चाहत रखने वालों के लिए अच्छे दिन आ गए हैं। कल सरकार ने विमानन नीति में बदलाव किया और यही खबर आज ज़्यादातर अखबारों ने इसको अपनी लीड खबर बनाया है। द हिंदू ने अपनी खबर की हेडिंग दी है, सरकार ने नागरिक उड्डयन नीति मंजूर की, उड़ानों को सस्ता बनाया। द टाइम्स ऑफ इंडिया की लीड खबर भी यही है, उसकी हेडिंग है विमानन नीति ने छोटे शहरों को उड़ान के नक्शे पर जगह दी। अमर उजाला की हेडलाइन कहती है कि 1 घंटे की उड़ान का अधिकतम किराया 2500 रुपये होगा और दैनिक भास्कर ने अपनी हेडलाइन में खबर को समझाने की कोशिश की है, फ्लाइट आधे घंटे की तो किराया 1200 रुपये, यानी आधे घंटे की फ़्लाइट कोई लेता है तो आधे घंटे का किराया 1200 रुपये देना होगा। द इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी लीड खबर इशरत जहां एनकाउंटर मामले में दस्तावेज जो गायब हुए हैं उससे जुड़ी खबर को पहली खबर बनाया है, और अखबार बताता है कि इशरत केस में गायब दस्तावेजों की जो जांच के प्रमुख थे उन्होंने एक गवाह को बताया कि वो उससे क्या सवाल पूछेंगे और जवाब क्या होगा। दैनिक भास्कर ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है और बताया है कि गुम हुई 5 फाइलों में से एक फाइल मिल गई है लेकिन 4 फाइलें अभी गायब हैं। द हिंदुस्तान टाइम्स ने एक खबर दी है जिसमें यह बताया गया है कि विश्व हिंदू परिषद की गोरक्षा शाखा सरकार से गायों के संरक्षण के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने की बात कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस सांसद कमलनाथ, जिन्हें 2 दिन पहले पंजाब का प्रभारी बनाया गया था, उन्होंने अपना पद छोड़ दिया है। इस खबर को भी ज़्यादातर अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। इसके अलावा सरकार ने खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों और महंगाई पर रोक लगाने के लिए कुछ फैसले किए हैं, इन फैसलों से जुड़ी हुई खबरों को कई अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। नवभारत टाइम्स की खबर कहती है सब्जी फलों के दाम फिक्स करेगी सरकार, यानी बाजार में किस दाम पर सब्जियां बिकेंगी ये सरकार तय करेगी। केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनके 21 विधायकों की सदस्यता पर तलवार लटक रही है, उसको लेकर कल भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक किया, ये खबर भी ज़्यादातर अखबारों के पहले पन्ने पर है जिसमें केजरीवाल के बयान को हेडलाइन बनाया गया है कई अखबारों ने, पीएम मुझसे बदला लें पब्लिक से नहीं, ये नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है और इसी से मिलती जुलती हेडलाइन दी है दैनिक जागरण ने भी। दिल्ली मेरठ के बीच हाई स्पीड ट्रेन को चलाने को मंजूरी मिली है, ये खबर हिंदुस्तान ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। कैराना को लेकर बीजेपी का जो संसदीय दल था इसको लेकर भी खबर है। एक खबर मैं आपको चलते चलते बता देता हूँ, उड़ता पंजाब को लेकर विवाद लगातार लंबे समय से चल रहा था, एक खबर इसके बारे में ये आई है कि कल ये फिल्म इंटरनेट पर लीक हो गई, हिंदुस्तान समेत कई अखबारों ने इसको भी पहले पन्ने पर
जी। समाचार पत्रों की समीक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वात्सल्य आपका। और अब समय विशेष रिपोर्ट का। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त के मुताबिक दुनिया में लगभग 2 करोड़ शरणार्थी हैं। अपने घर से दूर रहना, काम ना होना, पैसे कहाँ से आएंगे, बस कुछ ऐसे ही सवाल इनको सताते हैं। ऐसे ही कुछ शरणार्थी हैं अफगान से आई महिलाएं। दिल्ली में रह रही कुछ अकेली अफगान महिलाओं ने अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश की है, कैसे सुनिए सुमरनप्रीत कौर की इस रिपोर्ट में।
दिल्ली के भोगल की तंगलियों में एक घर के दूसरे मंजिल से प्रेशर कुकर की सीटियों की आवाज आ रही है, खाना पक रहा है, खुशबू दूर तक आ रही है। इस छोटे से घर में कुछ अफगानी औरतें दरी में आज के पकवान के बारे में बात कर रही हैं। हिजाब और सूट सलवार पहने रजिया ने बताया कि वो अपनी जिंदगी की सुरक्षा की वजह से भारत चली आई।
तो अफगानिस्तान उधर कुछ सिक्योरिटी प्रॉब्लम था, इसकी वजह से छोड़ना पड़ा। मेरे हस्बैंड का 2011 में तालिबान ने किडनैप किया और फिर उनको मार दिया। पहले तो घर में था, ऐसे कोई जॉब भी नहीं था और वैसे मुझे बहुत प्रॉब्लम था क्योंकि मैं भी एक सिंगल मॉम हूँ, अकेले, मेरे कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है, मेरे 4 बच्चे।
इनकी जैसी कई अकेली औरतें अपने बच्चों के साथ अफगानिस्तान छोड़ भारत आ गई, आई जान बचाने के लिए, पर यहाँ भी जीना आसान नहीं था।
आपको पता है दिल्ली में रहना, घर का खर्चा, किराया, कितनी बहुत मुश्किल है, प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी हुआ था, अभी भी कुछ दवाई खा रही हूँ।
UNHCR यानी संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के साथ भारत में 35,000 से ज़्यादा रेफ्यूजी और शरणार्थी रजिस्टर्ड हैं। लगभग 14,000 अफगानिस्तान से हैं जिनमें ज़्यादातर दिल्ली में रहते हैं। यहाँ आके कमाई के जरिए बहुत कम है, साथ में मानसिक तनाव। लेकिन अब कुछ औरतों ने अपने हालात बदलने की कोशिश की है, इन्होंने इल्हाम की शुरुआत की। इस समूह में ज़्यादातर महिलाएँ हैं जो अकेली रहती हैं। ये हफ्ते में 2 से 3 बार अफगानी खाना बनाती हैं और उन्हें दफ्तरों और दूतावास में बेचकर पैसे कमाती हैं। परवीन तो यहाँ आके अपने दुख दर्द भूल जाती हैं।
अब इल्हाम ग्रुप में कैसा लगता है?
मैं वक्त के मीटिंग फकत गजब।
मैं जब यहाँ आती हूँ तो अपनी बहुत सी बातें भूल जाती हूँ, मेरा तनाव कम हो जाता है। हालांकि घर की याद बहुत आती है, लेकिन कुछ पल के लिए खुशी मिल जाती है। हम मिलकर बातें करती हैं, दुख दर्द बांटती हैं। मुझमें आत्मविश्वास बढ़ा है और जीवन में कुछ आशा जगी है। मैं एक रेस्टोरेंट खोलना चाहती हूँ या एक रेस्टोरेंट की मैनेजर बनना चाहती हूँ।
इल्हाम की शुरुआत करने में मदद की UNHCR यानी संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त और गैर सरकारी संगठन एक्सिस ने। UNHCR की सुजिता मेहता बताती हैं कि जब इन औरतों से पूछा गया कि इन्हें क्या करना पसंद है तो एक बात सब में कॉमन थी, वो थी खाना बनाना।
सो UNHCR का एक पार्टनर है एक्सिस, जिससे हम हेल्प करते हैं कि रेफ्यूजीज़ कुछ कमा सकें और अपनी ज़िंदगी यहाँ पर डिग्निटी में जी सकें। हमें पता चला कि उनको कुकिंग में इंटरेस्ट है, तो हमने सोचा है कि इनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाए ताकि इनको एक कुछ स्किल्स आ जाएं, कल्नरी स्किल्स जो प्रोफेशनल, और ऑल्सो कुकिंग टेक्निक्स पता चलें जिसको इनको प्रोफेशनल लेवल पर, कमर्शियल लेवल पर कोई काम स्टार्ट करने में हेल्प करें। ताज में इनको ऑर्डर मिला, एम्बेसी से ऑर्डर मिला, अब साथ में इंडिविजुअल ऑर्डर्स भी उनको मिलते हैं, तो उनका अब रिस्पांस अच्छा आने लग गया।
चिकी सरकार दिल्ली के शाहपुर जाट में एक प्रकाशक हैं और वो कहती हैं खाना लाजवाब है। आप पहली बार ये सोचकर खाना ऑर्डर करते हैं कि आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन दोबारा ऑर्डर इसीलिए करते हैं क्योंकि खाना अच्छा होता है।
अलग टेस्ट, क्यों वो इतना स्पाइसी भी नहीं है और वो लोग का कुकिंग टेक्निक भी अलग है। मुझे सेकंड टाइम आएगा तो मेरा खाना पसंद होने चाहिए, तो एक दो बार चैरिटी के लिए, बट खाना इज खाना। टेस्ट होगा जो आप टेस्ट पास करेंगे जब खाना अच्छा होगा, टेस्ट अच्छा होगा, तो ये वो टेस्ट पास किया।
हालात तो पूरी तरह नहीं बदले हैं, लेकिन ये एक शुरुआत जरूर है। सुमिरन प्रीत कौर, BBC दिल्ली।
और अब बात खेलों की। जिम्बाब्वे में कल एक दिवसीय श्रृंखला में भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और आखिरी मैच में 10 विकेटों से हरा दिया और सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर लिया। हमारे सहयोगी रजत चांदना ने बात की वरिष्ठ पत्रकार एयाज मेनन से।
बहुत अच्छी जीत भारत के लिए, खास करके इस वजह से क्योंकि यहाँ पर सेकंड स्ट्रिंग टीम गई थी, जो बेंच स्ट्रेंथ था इंडिया का वो जिम्बाब्वे गया हुआ था। एक महेंद्र सिंह धोनी जो है वो दिग्गज खिलाड़ी थे और एक अच्छा मौका मिला युवा खिलाड़ियों को, जैसे KL राहुल है, फैज फजल ने अच्छे रन बनाए और खास करके बुमराह और चहल, क्योंकि इंडिया को गेंदबाजों की बहुत सख्त जरूरत है। जिम्बाब्वे की टीम बहुत ही हल्की है, टीम ही नहीं बन पा रही है उनसे, और नए कोच है मखाया एंटनी, मेरे ख्याल से वो अपने सर के बाल खींच रहे होंगे किस तरह से, जिस तरह से टीम ने परफॉर्म किया है, क्योंकि इसे लगा कि एक पार्टनरशिप बनी 40-50 रन की तो शायद 200-225 तक ले जाएंगे स्कोर, लेकिन चार गेंद में चार विकेट गई और फिर स्कोर 123 तक ही रह गया। तो आप सोचें कि चार गेंद में चार विकेट जिम्बाब्वे ने खोए और पूरे तीन मैचेस में भारत ने 3 विकेट खोए, तो इतना अंतर है दोनों ही टीम्स में और ये फील्ड पे बिल्कुल साफ जाहिर हो गया।
बात करें इस दौरे की तो भारतीय टीम को क्या सीखने को मिला और कितना अहम रहा ये दौरा अब तक, क्योंकि 3-0 की जीत काफी बेहतरीन जीत हुई।
देखिए बेहतरीन जीत है, ओवरसीज टूर पे आप जीते हैं इस तरह से, भले ही टीम हल्की हो सामने वाली, लेकिन जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री ये बताता है कि टैलेंट, बेंच स्ट्रेंथ भी अगर आप ले तो टैलेंट अच्छा है इंडिया के पास। मैं कहूंगा अगर आप लब्धि क्या हुई तो मैं कहूंगा KL राहुल की बल्लेबाजी, डेब्यू पे सेंचुरी लगाई वनडे क्रिकेट में, 50 बनाए उन्होंने, और ऐसा सोचा जाता था 6 महीने पहले तक के शायद टेस्ट क्रिकेट के लिए ही राहुल बने गए हैं, लेकिन जिस तरह से वो बैटिंग किए उन्होंने IPL में भी और यहाँ पर, ये बताता है कि कितनी तरक्की की है उन्होंने, अपने शॉट्स को इम्प्रोवाइज करते हैं, पावरफुल बिग शॉट्स भी खेलते हैं, और ये जरूर है कि वो एक जो हमारे रेगुलर प्लेयर्स हैं टीम में, वनडे टीम में और T20 टीम में, उन पे जरूर दबाव लगाएंगे। और उनके अलावा मैं मानता हूँ कि एक अच्छा फाइंड जो मिला है वो है चहल, क्योंकि लेग स्पिनर की जरूरत है इंडिया को, प्लेयर ऑफ द सीरीज या मैन ऑफ द सीरीज बने, 6 विकेट लिए उन्होंने, पिच की कंडीशन जो थी वो सीमर्स के हक में थी, लेकिन अच्छी स्पिन गेंदबाजी की है।
खेल पत्रकार एयाज मेमन से बात कर रहे थे रजत चान्ना। और अब समय है मुख्य समाचारों का।
BBC समाचार। अमरीकी अधिकारियों के मुताबिक ऑरलैंडो के एक क्लब में हुए हमले के बाद मुसलमानों को धमकी देने की घटनाएं सामने आई हैं। मामले की जांच कर रही FBI ने कहा है कि ऐसी घटनाएं जांच के काम में बाधा पहुंचा सकती हैं। ब्राजील के अंतरिम राष्ट्रपति मिशेल टेमर पर सरकारी तेल कंपनी पेट्रोब्रास के एक पूर्व अधिकारी ने भ्रष्टाचार में शामिल होने के आरोप लगाए हैं। टेमर ने इन आरोपों से इनकार किया है। ब्रिटेन में यूरोपीय संघ से अलगाव पर होने वाले जनमत संग्रह के पहले जर्मनी ने सदस्य देशों को आगाह किया है कि अगर ब्रिटेन ने अलग होने का फैसला किया तो यूरोपीय संघ बिखर सकता है। मिस्र के अधिकारियों का कहना है कि बीते महीने भूमध्य सागर में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान के अहम हिस्से मिल गए हैं। ये विमान पेरिस से काहिरा जाते वक्त हादसे का शिकार हो गया था। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे वात्सल्य राय। इसी के साथ नमस्कार भारत में बस इतना ही। आपसे 8 बजे दोबारा होगी विश्व भारती में मुलाकात। तब तक आप bbchindi.com पर आइए और ताज़ा तरीन खबरें पढ़िए। और आपसे मिलते हैं 8 बजे। धन्यवाद।